एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
एकत्रा ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिनके विचारों ने कहना चाहिए कि पश्चिमी दर्शन की दिशा ही बदल दी। डेविड ह्यूम।
हाँ बिल्कुल, और डेविड ह्यूम सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, वो इतिहासकार भी थे, अर्थशास्त्री, निबंधकार, मतलब एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत।
सही कहा, स्कॉटिश प्रबुद्धता के वो एक ऐसे प्रकाश स्तंभ थे जिन्होंने ज्ञान, नैतिकता, धर्म, यहाँ तक कि हम इंसान खुद को कैसे समझते हैं, इन सब पर गहरे सवाल उठाए।
और वो सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
हमारे पास उनके जीवन और विचारों पर कुछ अच्छी सामग्री है, जैसे डेविड ह्यूम एक दार्शनिक प्रोफाइल से कुछ खास बातें। तो आज इस ज्ञान गोष्ठी में हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से वो जरूरी जानकारी निकालें जो ह्यूम के महत्व को समझाएं।
हाँ, और देखें कि आज के समय में उनके विचार क्यों मायने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
ठीक है, तो ह्यूम को समझने के लिए शायद उनके समय को समझना जरूरी है ना। वो 18वीं सदी में थे।
जी हाँ, 1711 से 1776, वो दौर जिसे एज ऑफ एनलाइटनमेंट या प्रबुद्धता का युग कहते हैं। यूरोप में एक नई लहर थी, तर्क, विज्ञान और पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने की हिम्मत।
और खास तौर पर स्कॉटलैंड में स्कॉटिश प्रबुद्धता का दौर। सुना है उनका शहर एडिनबरा उस जमाने में बौद्धिक गतिविधियों का ऐसा गढ़ बन गया था कि उसे उत्तर का एथेंस कहते थे।
बिल्कुल, एडिनबर्ग उस समय विचारों का एक हॉटस्पॉट था। लोग सदियों पुरानी धार्मिक और पारंपरिक सोच को चुनौती दे रहे थे। वैज्ञानिक क्रांति हो चुकी थी, न्यूटन जैसे लोग दिखा चुके थे कि दुनिया को अनुभव और प्रयोग से समझा जा सकता है। एम्पिरिसिज्म की नींव पड़ रही थी।
और उनके आसपास भी कम दिग्गज नहीं थे। एडम स्मिथ, जो अर्थशास्त्र के पितामह माने जाते हैं, वो तो उनके गहरे दोस्त थे।
हाँ, गहरी दोस्ती थी दोनों में। और फिर यूरोप में रूसो, वोल्टेयर जैसे विचारक भी थे, और इमानुएल कांट। कांट ने तो खुद माना कि ह्यूम ने उन्हें हठधर्मिता की नींद से जगाया।
वाओ, ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब कांट जैसे दार्शनिक पर इतना गहरा असर।
जे, और ह्यूम खुद भी प्रभावित थे जैसे जॉन लॉक के अनुभववाद से कि सारा ज्ञान इंद्रियों से आता है, और फ्रांसिस हचिसन के नैतिक बोध सिद्धांत से कि नैतिकता का आधार भावनाएं है, तर्क नहीं। इन सब ने मिलकर ह्यूम के अपने विचारों की जमीन तैयार की।
अच्छा, तो ये तो हुआ उनके समय का माहौल। अब जरा उनके शुरुआती जीवन पर आते हैं। एडिनबर्ग में जन्म 1711 में।
हाँ, एक पढ़े लिखे परिवार में, लेकिन बहुत अमीर नहीं थे। प्रेस्बिटेरियन परिवार था। पिता का देहांत जल्दी हो गया जब ह्यूम सिर्फ 2 साल के थे।
और ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि उन्होंने सिर्फ 10 या 12 साल की उम्र में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया, इतनी कम उम्र में।
हाँ, ये असाधारण था, लेकिन उन्हें वहाँ का जो पारंपरिक पाठ्यक्रम था वो कुछ जमा नहीं, बोरिंग लगा।
तो उन्होंने डिग्री पूरी नहीं की, यूनिवर्सिटी छोड़ दी। शायद यहीं से उनकी स्वतंत्र सोच की शुरुआत हुई।
हो सकता है, फिर किशोरावस्था के अंत में उन्हें गहरा मानसिक और बौद्धिक संकट आया, जिसे उन्होंने खुद फिलोसॉफिकल मेलनकली यानी दार्शनिक उदासी कहा।
अच्छा, ये क्या था?
ये शायद गहन चिंतन और शंकाओं का दौर था, पर इसी संकट ने उन्हें एक दिशा दी। उन्होंने तय किया कि कानून की पढ़ाई वगैरह छोड़कर अपना पूरा जीवन दर्शन और लेखन को ही देंगे।
और इसी इरादे से वो फ्रांस चले गए, अकेले रहे, कम साधनों में, और वहीं उन्होंने अपनी वो महान कृति लिखी, अ ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर।
जी हाँ, उनकी सबसे महत्वाकांक्षी किताब। उन्होंने इसमें अपने पूरे दर्शन का सिस्टमैटिक ढांचा पेश करने की कोशिश की।
लेकिन जब ये किताब छपी, तब का किस्सा तो और भी दिलचस्प है, इतनी मेहनत के बाद।
हाँ, वो पूरी तरह फ्लॉप हो गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ह्यूम ने खुद बड़े दुख से लिखा कि ये किताब प्रेस से मुर्दा पैदा हुई।
सोचकर ही दुख होता है, अपनी सबसे बड़ी रचना का ऐसा हश्र।
बिल्कुल, कोई भी होता तो शायद हिम्मत हार जाता, पर ह्यूम ने नहीं। उन्हें लगा कि शायद लिखने का तरीका बहुत जटिल है, आम पाठक के लिए मुश्किल है।
तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने अपने उन्हीं मुख्य विचारों को लिया और उन्हें ज्यादा सरल, सुलभ भाषा में फिर से लिखा। नतीजा थी उनकी बाद की किताबें जैसे एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और एन इंक्वायरी कंसर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स। ये ज्यादा सफल रहीं।
और फिर उन्होंने इतिहास की तरफ रुख किया, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड लिखी।
हाँ, और वो किताब जबरदस्त हिट हुई। उसने उन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाई और आर्थिक स्थिरता भी। लोग उन्हें एक महान दार्शनिक से ज्यादा एक महान इतिहासकार के तौर पर जानने लगे उस समय।
ये भी एक विडंबना ही है। खैर, इस प्रसिद्धि के बाद उन्हें कुछ राजनयिक भूमिकाएं भी मिली।
जी, पेरिस और लंदन में। इससे उन्हें यूरोप के उस समय के जो टॉप बुद्धिजीवी थे, जैसे डिडेरो, वोल्टेयर, इन सब से मिलने जुलने का मौका मिला।
लेकिन एक बात और है, उनके धार्मिक विचारों को लेकर हमेशा विवाद रहा है ना?
हाँ, बहुत। वो धर्म पर काफी संदेहवादी थे, चमत्कारों पर सवाल उठाते थे, ईश्वर के अस्तित्व के तर्कों की आलोचना करते थे। इसी वजह से उन्हें 2 बार यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी नहीं मिल पाई। एडिनबर्ग और ग्लासगो, दोनों जगह उनके नास्तिक होने का आरोप लगाकर उन्हें रोक दिया गया।
कमाल है, मतलब इतने बड़े विचारक को अकादमिक पद नहीं मिला, फिर भी एडिनबर्ग के बौद्धिक समाज में उनका रुतबा कायम रहा।
हाँ, वो समाज के केंद्र में थे। लोग उनसे असहमत हो सकते थे, पर उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते थे।
चलिए, अब आते हैं उनके सबसे जरूरी हिस्से पर, उनके विचार। ह्यूम को अनुभववादी यानी एम्पिरिसिस्ट कहा जाता है। इसका क्या मतलब है?
अनुभववादी मतलब वो मानते थे कि हमारा सारा ज्ञान, हर आइडिया सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों के अनुभव, सेंस एक्सपीरियंस से आता है। जन्म से हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं होते। उन्होंने इसे 2 भागों में बांटा। इम्प्रेशंस यानी जो हम सीधे महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, ये ताज़ा और जीवंत होते हैं। और दूसरे हैं आइडियाज, जो इन्हीं इम्प्रेशंस की फीकी कॉपी होती हैं जब हम उनके बारे में सोचते हैं या याद करते हैं।
ठीक है,
तो सारा ज्ञान अनुभव से।
हाँ।
लेकिन फिर उनका वो सबसे विवादास्पद विचार आता है कारणता पर। ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। वो कह रहे थे कि हम असल में कारण और प्रभाव के बीच कोई जरूरी कनेक्शन नहीं देखते।
मतलब
जब हम बिलियर्ड बॉल को टकराते देखते हैं और दूसरी हिलती है, तो हम कनेक्शन नहीं देख रहे। हाँ, यही उनका क्रांतिकारी दावा था। वो कहते हैं कि हम बस 2 चीजें देखते हैं, एक घटना ए होती है और उसके तुरंत बाद दूसरी घटना बी होती है, और ऐसा बार बार होता है, कॉन्स्टेंट कंजंक्शन। हम देखते हैं कि पहली बॉल दूसरी से टकराई ए, और फिर दूसरी बॉल हिली बी। बस इतना ही, हम उन दोनों के बीच कोई अदृश्य शक्ति या जरूरी कनेक्शन नहीं देखते जो बी को ए का नतीजा बनाता है।
तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि ए के कारण बी हुआ? ये विश्वास कहां से आता है?
ह्यूम कहते हैं ये विश्वास तर्क से नहीं, बल्कि आदत, कस्टम या हैबिट से आता है। जब हम बार बार ए के बाद बी को होते हुए देखते हैं, तो हमारे दिमाग को इसकी आदत पड़ जाती है। अगली बार जब हम ए देखते हैं, तो हमारा मन अपने आप बी की उम्मीद करने लगता है। ये एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है, तार्किक नहीं।
बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि विज्ञान जिस कारण कार्य संबंध पर इतना निर्भर करता है, वो असल में हमारी एक मानसिक आदत है, कोई लॉजिकल गारंटी नहीं।
हाँ, और यहीं से जन्म लेती है प्रेरण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। अगर हमने 1000 बार देखा है कि सूरज पूरब से उगता है, तो हम तार्किक रूप से ये कैसे साबित कर सकते हैं कि वो कल भी पूरब से ही उगेगा? हम सिर्फ मान लेते हैं, क्योंकि हमें आदत हो गई है। ह्यूम कह रहे थे कि अतीत के अनुभव से भविष्य के बारे में निश्चित निष्कर्ष निकालना तार्किक रूप से संभव नहीं है। ये विज्ञान की बुनियाद पर एक बहुत बड़ा सवाल था।
वाकई, इसने तो पूरी ज्ञान मीमांसा को हिला दिया होगा। अच्छा, और नैतिकता, मोरालिटी के बारे में उनके क्या विचार थे?
नैतिकता में भी उन्होंने तर्क की भूमिका को कम किया। उन्होंने कहा कि नैतिक निर्णय, क्या अच्छा है क्या बुरा, ये तर्क से तय नहीं होते, बल्कि हमारी भावनाओं, सेंटिमेंट्स और सहानुभूति, सिंपथी से तय होते हैं। जब हम किसी को दान देते हुए देखते हैं और हमें अच्छा महसूस होता है, तो हम उस काम को अच्छा कहते हैं। ये हमारी भावना है जो फैसला कर रही है, हमारा तर्क नहीं। इसे नैतिक भावुकतावाद या मॉरल सेंटिमेंटलिज्म कहते हैं।
तो तर्क का क्या काम है नैतिकता में?
तर्क बस एक सहायक है। वो हमें बता सकता है कि किसी काम के नतीजे क्या होंगे या कौन सा तरीका हमारे लक्ष्य को पाने के लिए बेहतर है। लेकिन अंतिम मंजूरी या नामंजूरी तो भावनाएं ही देती हैं। ह्यूम का वो मशहूर कथन है ना?
हाँ, तर्क जुनून का गुलाम है।
बिल्कुल, रीजन इज एंड ऑट ओनली टू बी द स्लेव ऑफ द पैशंस। जुनून यानी हमारी भावनाएं, इच्छाएं तय करती हैं कि हमें क्या चाहिए। तर्क बस रास्ता बताता है।
और इसी से जुड़ा उनका वो है चाहिए भेद
इज और डिस्टिंक्शन भी है।
ये क्या है?
ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ह्यूम ने कहा कि आप कितने भी तथ्यात्मक बयान इकट्ठा कर लें, जैसे दुनिया में गरीबी है, लोग दुख सहते हैं, आप इन तथ्यों से सीधे ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि हमें क्या करना चाहिए। ऑड स्टेटमेंट, जैसे हमें गरीबी मिटानी चाहिए। तथ्यों से मूल्यों तक कूदने का कोई तार्किक रास्ता नहीं है। है से चाहिए तक का सफर तर्क से नहीं होता।
तो फिर हमारे नैतिक चाहिए कहां से आते हैं अगर तर्क से नहीं? तो
ह्यूम के अनुसार वो हमारी भावनाओं, सामाजिक परंपराओं और उपयोगिता से आते हैं। जो चीजें हमें या समाज को सुखद लगती हैं या फायदेमंद होती हैं, उन्हें हम अच्छा या सही मानने लगते हैं।
कमाल है। और फिर उन्होंने व्यक्तिगत पहचान यानी स्व सेल्फ पर भी सवाल उठाया कि कोई स्थायी मैं नहीं है।
हाँ, ये भी उनका एक और चौंकाने वाला विचार था। हम सबको लगता है कि हमारे अंदर एक मैं है जो बचपन से बुढ़ापे तक वही रहता है। ह्यूम ने कहा, जरा ध्यान से अपने अंदर झांक कर देखो, क्या तुम्हें कोई एक स्थायी चीज मिलती है जिसे तुम मैं कह सको, या तुम्हें सिर्फ विचारों, यादों, भावनाओं, संवेदनाओं का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह मिलता है?
हाँ, ध्यान दे तो ऐसा ही लगता है, सब कुछ बदलता रहता है।
बिल्कुल। तो ह्यूम ने कहा कि जिसे हम मैं कहते हैं वो असल में इन बदलती हुई धारणाओं का एक बंडल है जिन्हें याददाश्त और आदत ने एक साथ जोड़ रखा है। कोई अलग से स्थायी आत्मा या स्व जैसी चीज नहीं है।
ओ, मतलब हमारा स्व भी एक तरह की मानसिक रचना है।
उनके अनुसार हाँ, एक तरह का भ्रम, या कहें कि एक उपयोगी कहानी जो हम खुद को सुनाते हैं।
ये सारे विचार तो सच में क्रांतिकारी थे और इन्हें उन्होंने अपनी खास किताबों में लिखा। कौन कौन सी मुख्य थी?
सबसे पहले तो वही अ ट्रीटिस ऑफ ह्यूमन नेचर 1739 एंड 40। ये सबसे व्यापक थी पर शुरू में असफल रही। फिर आई एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1748। इसमें उन्होंने कारणता, प्रेरण और चमत्कारों पर अपने तर्क पेश किए। ये ज्यादा पढ़ी गई। फिर एन इंक्वायरी कंसर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स 1751। इसमें उनका नैतिक दर्शन था। ह्यूम खुद इसे अपनी सबसे अच्छी किताब मानते थे।
और वो इतिहास वाली किताब?
हाँ, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड 1754 एंड 62। ये कई वॉल्यूम में थी और बहुत ज्यादा सफल हुई। और एक और महत्वपूर्ण किताब है डायलॉग्स कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन। ये उनकी मृत्यु के बाद 1779 में छपी।
मृत्यु के बाद क्यों?
क्योंकि इसमें उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए जाने वाले पारंपरिक तर्कों, खासकर डिजाइन तर्क, अपोजिमेंट फ्रॉम डिजाइन की बहुत तीखी आलोचना की थी। जीते जी छपवाते तो शायद और ज्यादा बवाल होता।
समझ सकती हूँ। तो इन विचारों का असर क्या हुआ? शुरू में तो विरोध हुआ होगा।
हाँ, शुरू में काफी विरोध और गलतफहमी हुई, लेकिन धीरे धीरे उनका असर बढ़ता गया। कांट पर असर की बात तो हमने की, उनके विचारों ने उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म के विकास में भी भूमिका निभाई, खासकर बेंथम और मिल पर। 20वीं सदी में तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने उनके अनुभववाद को आगे बढ़ाया और आज भी विश्लेषणात्मक दर्शन, एनालिटिक फिलॉसफी में उनके सवाल जिंदा हैं।
तो आज के जमाने में उनके विचार कैसे प्रासंगिक हैं?
कई तरह से, जैसे विज्ञान के दर्शन में प्रेरणा की समस्या आज भी एक बड़ा मुद्दा है। हम वैज्ञानिक सिद्धांतों पर कितना भरोसा कर सकते हैं? नैतिक मनोविज्ञान में आजकल जो रिसर्च हो रही है वो अक्सर ह्यूम की बात को सही साबित करती है कि नैतिक फैसलों में भावनाओं का कितना बड़ा रोल है। और तो और, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संज्ञानात्मक विज्ञान, कॉग्निटिव साइंस में भी उनके विचार काम आते हैं कि दिमाग कैसे सीखता है, कैसे पैटर्न पहचानता है, कैसे सीमित जानकारी से नतीजे निकालता है।
उनके कुछ मशहूर कथन भी हैं जो उनके विचारों को अच्छे से पकड़ते हैं। एक तो वो तर्क और जुनून वाला।
हाँ।
और एक और बहुत अहम है, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने विश्वास को साक्ष्य के अनुपात में रखता है। अ वाइज मैन प्रोपोर्शंस हिज बिलीफ टू द एविडेंस।
इसका क्या मतलब है?
मतलब ये कि आपके पास किसी बात के लिए जितने पुख्ता सबूत हों, आपको उस पर उतना ही यकीन करना चाहिए। बिना सबूत के या कमजोर सबूत पर आंखें बंद करके विश्वास करना समझदारी नहीं। ये उनके संदेहवाद और अनुभववाद का सार है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। और एक और कथन था आदत के बारे में।
हाँ, तब रीति रिवाज ही मानव जीवन का महान मार्गदर्शक है। कस्टम देन इज द ग्रेट गाइड ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये बताता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी उम्मीदें, हमारी दुनिया की समझ, ये सब तर्क से ज्यादा हमारी आदतों और परंपराओं से चलती हैं।
दिलचस्प। इतने गहरे और कभी कभी परेशान करने वाले विचार देने वाले ह्यूम असल जिंदगी में कैसे इंसान थे?
ये जानकर हैरानी होती है कि वो बहुत ही मिलनसार, हसमुख और नेकदिल इंसान थे। उनके दोस्त उन्हें बहुत पसंद करते थे। पेरिस में तो उन्हें लोग प्यार से लुबोन दाविद यानी अच्छा डेविड कहते थे। उनके संदेहवादी विचारों के बिल्कुल विपरीत उनका स्वभाव था।
लेकिन उनका रूसो के साथ कुछ झगड़ा भी हुआ था।
हाँ, वो एक काफी कड़वा और सार्वजनिक विवाद था। ह्यूम ने रूसो की मदद की थी, उन्हें इंग्लैंड बुलाया था, पर रूसो थोड़े शक्की मिजाज के थे। उन्हें लगा ह्यूम उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मामला काफी बढ़ गया था।
अच्छा, और वो दलदल वाला किस्सा क्या है?
हाँ, वो मजेदार है। कहते हैं एक बार वो एडिनबर्ग के पास कहीं दलदल में फंस गए। एक स्थानीय औरत ने उन्हें देखा और पहचान लिया कि ये तो महान काफिर ग्रेट इन्फिडल ह्यूम है। तो उसने मदद करने से पहले शर्त रखी कि ह्यूम को प्रभु की प्रार्थना और ईसाई धर्म के मूल सिद्धांत सुनाने पड़ेंगे।
और ह्यूम ने सुनाए?
हाँ, कहते हैं उन्होंने हंसी खुशी सुना दिए। ये उनकी हाजिर जवाबी और शायद थोड़ी शरारत भी दिखाता है।
कमाल के थे। और कहा जाता है कि उन्होंने मौत का सामना भी बड़ी शांति से किया।
जी हाँ, उनके दोस्त एडम स्मिथ ने उनके आखिरी दिनों के बारे में लिखा है। वो बिल्कुल शांत थे, संभाव में थे, दोस्तों से मजाक कर रहे थे। अपनी मौत से कुछ समय पहले उन्होंने अपनी एक छोटी सी आत्मकथा लिखी, माय ओन लाइफ, जिसमें उन्होंने बहुत शांति से अपने जीवन को देखा। ये उनके आलोचकों के लिए भी हैरान करने वाला था।
जाहिर है, इतने अलग विचार रखने वाले को आलोचना तो झेलनी ही पड़ी होगी।
बहुत, खासकर धार्मिक गुटों से। नास्तिकता का आरोप तो आम था। उनके विचारों को नैतिकता के लिए खतरनाक माना गया। दार्शनिक स्तर पर भी आलोचना हुई। जैसे ये कहा गया कि उनका चरम संदेहवाद तो खुद को ही काट देता है। अगर हम किसी चीज पर यकीन नहीं कर सकते तो ह्यूम की बातों पर कैसे करें?
हाँ, ये एक क्लासिक आलोचना है संदेहवाद की।
और उनके नैतिक सिद्धांत पर आरोप लगा कि वो सब कुछ सापेक्ष बना देता है, मॉरल रिलेटिविज्म। अगर सही गलत सिर्फ भावना है तो फिर कोई पक्का नैतिक मापदंड कैसे होगा?
हालांकि ह्यूम ने शायद ये तर्क दिया होगा कि मानवीय भावनाएं काफी हद तक समान होती हैं।
हाँ, उन्होंने सहानुभूति, सिंपथी और मानवीय स्वभाव की समानताओं पर जोर दिया था, लेकिन ये बहस आज भी जारी है।
और एक और मुद्दा आजकल उठता है, उनके नस्ल संबंधी विचारों को लेकर।
जी, उनके एक निबंध के एक फुटनोट में कुछ ऐसी बातें हैं जो उस समय के नस्लवादी पूर्वाग्रहों को दिखाती हैं। हालांकि वो उस जमाने के हिसाब से शायद आम विचार रहे हों, पर आज के नजरिए से वो बिल्कुल अस्वीकार्य हैं। ये उनके काम की एक जटिलता है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो डेविड ह्यूम का योगदान क्या है?
देखिए, वो आधुनिक दर्शन के एक ऐसे विशालकाय स्तंभ हैं जिन्हें आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। उन्होंने हमें इंसानी तर्क की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने ये दिखाया कि हमारे कितने ही गहरे विश्वास, जिन्हें हम बड़े तर्कसंगत समझते हैं, वो असल में आदत, परंपरा और भावनाएं की उपज हैं।
उनका काम हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाते रहें, उनके लिए सबूत मांगे और ये समझने की कोशिश करें कि हम क्या जान सकते हैं और कैसे। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। अगर ह्यूम सही है कि कारण और प्रभाव का नियम बस हमारे दिमाग की आदत है, एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न, तो हम इस बात पर कैसे भरोसा करें कि कल सुबह भी सूरज निकलेगा? क्या ये सिर्फ एक उपयोगी विश्वास है जिसे हमने अपना लिया है, या फिर इसका कोई गहरा वस्तुनिष्ठ आधार है जिसे ह्यूम पकड़ नहीं पाए? ये सवाल आज भी दार्शनिकों को उलझाता है।
वाकई एक गहरा सवाल सोचने के लिए। डेविड ह्यूम पर इस ज्ञान गोष्ठी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।